السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، آمين يا رب العالمين. कल हमने दिलों की सख्ती के बारे में बात की थी और उम्मीद है कि आप लोगों ने देखा होगा, जायज़ा लिया होगा अपने दिलों का कि कहीं ये सिम्टम्स हमारे अंदर तो नहीं है, और अगर हैं तो बहुत ज़रूरी है कि हम इनकी वजूहात को देखें, क्या रीज़न्स हैं कि हम यहाँ तक पहुँचे, और उसी के साथ इलाज भी होगा. लेकिन जब आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो पहली चीज़ ये होती है कि वो आपकी बीमारी को डायग्नोज करता है. और जैसे हमने कल कुछ चीज़ें देखी थी जिनको अलामात कहा जा सकता है, सिम्टम्स कहा जा सकता है, उनसे हमने अपनी बीमारी को डायग्नोज करने की कोशिश की है कि किस हद तक बीमारी है हमारे अंदर, क्या बहुत ज़्यादा है, कम है या है ही नहीं. अगर हमें लगता है कि बीमारी एक फर्स्ट स्टेज की है या सेकंड स्टेज की है या बहुत बढ़ गई है, जो भी हालात हैं हमारे उसके मुताबिक अब क्या होगा, सेकंड चीज़ कि दवा के साथ साथ परहेज़ भी होगा. परहेज़ डॉक्टर आपको किन चीज़ों से करता है? वो कहता है कि आप मिसाल के तौर पे चिकनाई खाते थे, अब वो छोड़ दें, आप मीठा बहुत खाते थे तो मीठा छोड़ दीजिए, आप बहुत ज़्यादा यानी बैठ के काम करते थे तो अब आप एक्सरसाइज करना शुरू कर दें, इस तरह की चीज़ें बताता है. यानी कुछ चीज़ों को मना कर देता है, उनसे परहेज़ बताता है और साथ साथ दवा देता है. तो आज हम असबाब देखेंगे कि क्या चीज़ें हम करते थे जिनको हमने रोकना है, और फिर साथ दवा भी शुरू करनी है. ठीक है, तो अब जो चीज़ें असबाब में आती हैं या जिनकी वजह से ये हमारी बीमारी वजूद में आई, जैसे आप देखते हैं कि एक बंदे को हार्ट की प्रॉब्लम हो गई तो आप ऑयली चीज़ें बहुत खाते थे, फ्राइड बहुत खाते थे, तो जिसकी वजह से, तो अब उसको छुड़ाया गया ना, इसी तरह हम जब वजूहात देखेंगे ना यहाँ पे, तो आप देखें हो सकता है इनमें से एक वजह आपके अंदर हो या दो वजूहात हों जिसकी बिना पे ये बीमारी शुरू हुई है. अब उन चीज़ों को हमने रोकना है, उनसे हमने परहेज करना है. तो पहली चीज़ हम देखते हैं वो ये है कि जिस वक़्त इंसान ईमानी माहौल से दूर रहता है तो उसका दिल सख्त होना शुरू हो जाता है. यानी इंसान अगर ऐसे माहौल में उठता बैठता है, अपना दिन गुजारता है, जहाँ पे हर तरफ लोग गफलत का शिकार हैं, जहाँ पे या तो लोग काफिर हैं, ये भी हो सकता है, और बाज़ जगह हमारी मजबूरी होती है, जैसे हमें ऐसी जगह पे जॉब कर रहे होते हैं या ऐसे लोगों के साथ कारोबार कर रहे होते हैं, मगर उसके बाद भी फिर ज़रूरी ये था कि अगर हमने पूरा दिन ऐसे लोगों के साथ गुजारा तो अब हम अपने ईमान की डोज लेने के लिए ऐसे लोगों के पास जाते जहां पर हमें ईमान बढ़ता हुआ महसूस होता है, जहां पे हमारा ईमान तरोताज़ा हो जाता है. लेकिन जब हमने उसका एहतमाम नहीं किया और मुसलसल हम कुफर के माहौल में रहे या गफलत जहाँ पे लोगों में बहुत छाई रहती है उनके अंदर रहे, तो आहिस्ता आहिस्ता हमारा दिल सख्त होना शुरू हो गया. लिहाजा अब ऐसी जगह जहाँ पे तो हमारी मजबूरी है कि हमने वहाँ पे रहना है, जैसे मैंने आपको कहा कि काम कारोबार है, तो उसके बाद हम एहतमाम करें कहीं से ईमानी डोज लेने की. और जहाँ पे हमारी मजबूरी नहीं है, मिसाल के तौर पे ऐसे दोस्त हैं, ऐसी गैदरिंग्स हैं जो अल्लाह रसूल से दूर हैं, दीन की बात उनके को एलर्जी उनको होती है उनसे, जो खुद गुनाहों को बुरा ही नहीं समझते, तो यहां पर हमारे दिल सख्त हुए थे, हमने इन जगहों को छोड़ देना, ऐसी मजलिसों को, ऐसे लोगों के पास बैठने को, वरना दिल की सख्ती दूर नहीं हो सकती. आपको दवा भी बता दी जाए ना, आपको इलाज बता भी दें, तब भी अगर आपने ये परहेज नहीं किया तो इलाज फायदा नहीं देगा. दवा तभी फायदा देती है ना जब आप सब परहेज करते हैं. आप सारा दिन उठते बैठते ऐसे लोग में, आपके दोस्त ऐसे हैं जिनके दिल खुद सख्त हुए में, जो बेनमाजी हैं, जो बेपर्दे हैं, जो अपनी आखरत से गाफिल हैं, जो खुद दुनिया में डूबे हुए हैं, वो उन उनकी जिंदगियां दुनिया के गिर्द ही घूमती हैं, तो वो आपको अल्लाह की याद कहाँ करवाएंगे? खुद सोचें, कोशिश करें अपना ईमानी माहौल बनाएं, दीनी लोगों में उठे बैठे, दीनी माहौल में उठे बैठे, मस्जिदों में जाएं, सिर्फ रमजान में नहीं उसके बाद भी, बच्चों को भी वो माहौल दें। बच्चे भी स्कूल जाते हैं तो वहां पे ऐसे लोगों में रहते हैं जो मसलन गैर मुस्लिम हैं, या जो ऐसे घरों से आए हुए हैं जहां पर दीन को कोई वक्त नहीं दी जाती। तो अब बच्चों को भी डोज चाहिए ईमान की, अब ये वालदैन की जिम्मेदारी है कि वो उनको ऐसा माहौल प्रोवाइड करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि भेड़िया उसी बकरी का शिकार करता है जो अपने रेवड़ से दूर रहती है। जब आप ईमानी लोगों से दूर रहेंगे, ईमानी माहौल से दूर रहेंगे, काफरों से दोस्तियां रखेंगे या ऐसे लोगों से दोस्तियां रखेंगे जो खुद अल्लाह के दीन से दूर हैं, जिनको शैतान ने शिकार बनाया हुआ, तो उसके बाद फिर अपने ईमान का क्या हाल रह जाएगा? तो जब मुसलसल ऐसी जगहों पर इंसान रहे तो दिल फिर ईमान से खाली हो जाता है। तो इन मजलिसों को सब्स्टिट्यूट करें ऐसी मजलिसों से जहां पर अल्लाह ताला की बात हो, दीन की बात हो, आखरत की बात याद दिलाई जाए। नंबर टू, क्या चीज सबब बनी उन मजालिस से दूर रहना जहां पर अल्लाह के दीन को सीखा सिखाया जा रहा होता था? जब हम ऐसी मजलिसों से दूर रहे, क्यों? हम इसलिए कि बिजी हैं बहुत, हमारे बहुत सारे काम हैं, तो हम उन मजलिसों से दूर भागते रहे, तो अब ईमान की ये हालत हो गई है कि ईमान बोसीदा हो गया है। आपको पता है ईमान भी बोसीदा हो जाता है दिलों में, क्योंकि मुअज्जम कबीर की रिवायत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों तुम्हारे दिलों में ईमान ऐसे बोसीदा हो जाता है जैसे पुराना कपड़ा बोसीदा हो जाता है। इसलिए अल्लाह ताला से दुआ करते रहो करो कि अल्लाह ताला तुम्हारे दिलों में ईमान को ताजा करता रहे। तो आज मैं आपको दुआ बताऊंगी भी कि जो ईमान को ताज़ा करने की है। इसका मतलब ईमान एक सा नहीं रहता, ईमान भी अप एंड डाउन होता रहता है, ईमान भी ताज़ा होता है और कभी वो सीधा हो जाता है, मुरझा जाता है, जैसे पौधा मुरझा जाता है उसको पानी ना मिले। तो आप अगर ईमान की मजलिसों से, दीन की मजलिसों से दूर रखेंगे अपने दिल को, तो क्या होगा? ऐसे ही जैसे पौधा मुरझा गया, इसी तरह ईमान भी मुरझा जाएगा। इसको भी तो गिज़ा चाहिए, ईमानी गिज़ा मिली नहीं तो कैसे ये परवान चढ़ेगा? तो अगर दिल दूर है, अगर इंसान ऐसी जगह से गिज़ा नहीं ले रहा, तो अब अपने आप को ऐसी मजलिसों में लेकर जाएं, ऐसी जगहों पर बिठाएं जहां पर ईमान की गिज़ा मिलती हो, जहां पर आपके लिए नेकी के मवाके हो, जहां पर गुनाहों से बचने की तरगीब दी जाती हो। आप देखते हैं हम जिस्म के लिए कितना ख्याल रखते हैं कि इसको प्रोटीन भी मिलनी चाहिए, इसको कैल्स भी मिलनी चाहिए, इसको इतनी कैलोरीज हर दिन हमने खानी है, और हर कोई अपने वजन के मामले में बड़ा सेंसिटिव है, उसके मुताबिक खा रहा है। तो जिस्म की ग़िज़ा का हम इतना ख्याल करते हैं, क्या रूह की ग़िज़ा, इस दिल की ग़िज़ा, ईमानी ग़िज़ा का हम ख्याल नहीं करें कि जिस ईमान की बेस के ऊपर मेरी आखरत संवरनी है, उस ईमान को हम तरोताज़ा रखने के लिए कोशिश ना करें? ये तो नादानी है। जो मजलिसें दिल को अल्लाह की याद से दूर करने वाली हैं, उनको छोड़ दें और वो दोस्त और वो मजलिसें अपनाएं जहां से दिल को ईमान की गिज़ा मिलती रहे। इसी तरह तीसरी चीज ये है कि गुनाहों का कसरत से इर्तकाब करना, खासकर कबीरा गुनाहों का। जब बार बार इंसान गुनाह करता है ना, तो दिल जंग आलूद हो जाता है, फिर दिल सख्त हो जाता है। जैसे हदीस में आता है कि मोमिन जब गुनाह करता है तो उसके दिल पे स्याह धब्बा लग जाता है, अगर तौबा कर ले तो अल्लाह ताला उसको माफ कर देता है, इस दाग को अल्लाह ताला धो देता है। और अगर इंसान तौबा नहीं करता, जैसे कि बाज दफा इंसान तौबा से बहुत ही गाफिल रहता है, सुस्ती करता है तौबा करने में, और ये सोचता रहता है कर लेंगे कर लेंगे, और मजीद गुनाह करता रहता है, तो ये जो स्याह धब्बा है ये फैलता जाता है, हत्ता कि सारा जिस्म इससे स्याह, सारा दिल इससे स्याह हो जाता है। और जब पूरा दिल स्याह हो जाता है तो फिर इसमें कुछ खैर की गुंजाइश नहीं रहती। लिहाजा इंसान कोशिश करे कि गुनाह अगर हो गया तो फिर इंसान फौरन तौबा की तरफ आए, तौबा में कभी डिले ना करे, तौबा के मामले में कभी इसको टाले नहीं और शैतान के बहकावे में ना आए। चौथी चीज ये है जो सबब बनती है दिल की सख्ती का और जिससे परहेज जरूरी है, वो है दुनिया में ही डूब जाना, यानी दुनिया में पैसा कमाने के अंदर इतना मगन हो जाना कि अपनी आखरत को बिल्कुल पीछे डाल देना। रिस्क कमाना मना नहीं है, बल्कि ऐन इबादत है। इंसान रिस्क के हलाल कमाता है तो वो भी इबादत है, लेकिन इसी को सब कुछ समझ लेना, ना नमाज का टाइम मिल रहा है, ना कुरान पढ़ने का, ना औलाद की तरबियत करने का, ना ही अपने दीन के किसी काम का, बस भाग दौड़ सारा दिन क्या है दुनिया के इसी के पीछे लगे हुए, तो ये तब भी दिल सख्त हो जाते हैं। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में फरमाया, ए ईमान वालो, कहीं अल्लाह का दिया हुआ माल और औलाद तुम्हें अल्लाह से गाफिल ना कर दे। इन्हीं चीज़ों के पीछे लग के इंसान अल्लाह ताला से गाफिल हो जाता है। तो इंसान को तनबीह की गई, वॉर्न किया गया कि ये ना हो कि ये माल तुम्हें इतना अपने अंदर मशगूल कर ले, इसको कमाना के बस दिन रात जॉब बिजनेस, इसकी धुन दुकान है या कारोबार है जो भी है, उसी की मसरूफियात इतनी ज़्यादा हैं कि खाना खाते हुए भी साथ फ़ोन रखा हुआ और उसी में मगन है, वो ही दिमाग पे छाया हुआ है, घर पे है या दफ्तर में है, ध्यान एक ही तरफ है, बहुत कुछ है मगर और की दौड़ है। बच्चों के लिए बना लूं, हर एक के लिए एक एक प्लॉट छोड़ जाऊं, वहां इन्वेस्टमेंट कर दूं, 9 और 99 के चक्कर में पड़े हुए हैं, और ये याद ही नहीं है कि आखरत भी कोई है और वहां के लिए भी कोई तैयारी करनी है, तो फिर दिल सख्ती होंगे और क्या होगा। पांचवीं चीज जो दिल को सख्त करती है वो है मौत को भूल जाना, अपनी वापसी याद ना होना। इसका मतलब मौत को ज्यादा याद रखना दिल को नरम करता है। इसी वजह से आप जाएं उन लोगों के घर में जहां पे कोई वफात हुई हो, उनके साथ ताजियत करें, आप देखते भी होंगे, नोट भी करते होंगे, क्योंकि उस वक्त दिल इंसान का नरम हो जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया कि कसरत से लज्जतों को तोड़ने वाली को याद करूं। क्या चीज है जो लज्जतों को तोड़ती है? मौत। मौत से वाकई इंसान का मजा खराब हो जाता है, इसीलिए तो अक्सर लोग मौत का जिक्र भी सुनना पसंद नहीं करते, बल्कि उनके सामने कोई जिक्र कर दे तो कहते हैं छोड़ो इन बातों को, कोई और बात करूं, क्या तुम डरा देने वाली बातें कर रही हो। वो ऐसी मजलिसों में भी जाना पसंद नहीं करते जहां पे कुछ ऐसी बातें हो रही हैं। अक्सरियत हमारी क्या पसंद करती है? हल्ला गुल्ला और बातचीत और हर वक्त कह कहे लगाना और बस यहीं की बातें होती रहें। आखरत की याद और मौत की याद खास तौर पे इसको करना बुरा माना जाता है और मनहूस समझा जाता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो फरमाया कसरत से याद करो, और हम लोग सोचते हैं कि ये तो नहुसत है ये बात करना भी। हम ऐसे सोचते हैं जैसे कि अगर हमने इसकी बात कर ली तो शायद मौत अभी आके हमें पकड़ लेगी या हम में से किसी पे आ पड़ेगी, हालांकि मौत का एक वक्त मुकर्रर है, उससे पहले नहीं आ सकना। तो असल में तो मौत ही हमारी हिफाजत कर रही होती है, उससे पहले मौत आ ही नहीं सकती, तो जो वक्त है उस पे ही आनी है। लिहाजा अपनी मौत को जब कसरत से याद करेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता दिल की सख्ती दूर होगी। तो ऐसी बातें करें या ऐसी चीज़ों को सोचें कि जब मैं मर जाऊंगी तो क्या होगा, कब्र कब्रिस्तान की ज़ियारत करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कब्रों की ज़ियारत किया करो, क्योंकि कब्रों की ज़ियारत इंसान के दिल को नरम करती है और कब्रों की ज़ियारत से इंसान की आंखों से आंसू रवा हो जाते हैं। वाकई जब कब्रिस्तान इंसान जाता है तो किस लिए जाना चाहिए? आखरत की याद के लिए जाना चाहिए, इसके लिए जाना चाहिए कि दिल की सख्ती दूर हो जाए। वहां जाएं और सोचें कि देखो ये भी तो एक दिन मेरी तरह ही चलते फिरते थे, आज देखो कहाँ पहुंच गए। अब ये कोई नेकी नहीं कर सकते, अब अपने अमल में कुछ भी इजाफा नहीं कर सकते, मेरा भी यही ठिकाना है। तो फिर ये दुनिया की लज्जतें भी इंसान को अट्रैक्ट उस तरह से नहीं करेंगे, फिर इंसान दुनिया में डूबने से बच जाएगा अगर वो अपनी मौत को याद रखेगा, किसी मैयत को गुस्ल देने में शरीक हो जाए, किसी के जनाजे को अटेंड कर लें, इससे भी मौत की याद आती है। तो अगर वैसे ना आए तो चारों नाचार ऐसी जगहों पर तो आ ही जाती है, लिहाजा ऐसी जगहों पर जाए और याद करें अपने अंजाम को भी। इसी तरह एक बात जो दिल को सख्त करती है और जो हमारे यहाँ बहुत मरहूब है, वो है बहुत ज़्यादा हंसना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बहुत ज़्यादा हंसा ना करो, ज़्यादा हंसना दिल को मुर्दा कर देता है। यानी हर वक्त ही बस हंसी मजाक चुटकुले छोड़ते रहना, कभी सीरियस ही ना होना। और हम सोचें इसमें क्या हर्ज है, और इस शुगल मेले को हम बहुत पसंद करते हैं, लेकिन ये कोई पसंदीदा बात नहीं है। क्योंकि जो हर वक्त हंसता रहता है, कभी सीरियस ही नहीं होता, वो कैसे अपनी आखरत के बारे में सीरियस होगा? वो कैसे अपने अंजाम का कभी सोच पाएगा? वो तो बस हंसी मजाक में ही रहता है। तो ये बहुत ऊंचे ऊंचे कहकहे लगाना भी पसंदीदा नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी ऐसे कहकहे नहीं लगाए थे। तो हम भी, हमारे कहकहों की आवाज अगर दूसरे कमरों तक जा रही हो, एक जगह पे औरतें बैठी हों और वो इतनी ऊंची कहकहे लगा रही हैं कि मर्दों में उनकी आवाजें जा रही हैं, तो ये बुरी बात है, वैसे भी नहीं लगाने चाहिए। पसंदीदा क्या, बस मुस्कुरा दें, हंस सकते हैं, लेकिन ऐसे कहकहे लगाने ये अच्छा नहीं, और बार बार और हर बात के ऊपर बस हंसते ही चले जाना ये भी दुरुस्त नहीं है। इसी तरह जुबान की जो बातें हैं, कसरत कलाम, ये भी इंसान के दिल को सख्त कर देता है। पर बोलते रहना, हर वक्त बोलना, जाहिर है जितना ज्यादा बोलेंगे उतनी ज्यादा कसावत कलबी होगी, उतनी ज्यादा दिल की सख्ती होगी। इंसान को पता ही नहीं चलता मैं बोल क्या रहा हूँ, फिर बोलते बोलते ऐसी बातें बोल जाता है जो कि खैर की नहीं होती, जिनमें कोई फायदा नहीं होता किसी का। तो बोलें भी तो ऐसी बात बोलें जिसमें खैर हो, अगर ऐसी कोई बात नहीं कर सकते तो फिर खामोशी इख्तियार करें। जरूरी तो नहीं होता कि हमने हर वक्त बोलना ही हो, जरूरी तो नहीं होता कि हम हर वक्त ऐसे मूड में ही रहें कि बस या तो एंटरटेनमेंट के लिए या फिर बस वैसे ही बोलते ही जाना, और कोई मिला नहीं अगर तो फिर हम क्या शुरू कर देते हैं, चलो किसी को टेक्स्ट कर लें, चलो किसी से फोन पे बात कर लें, उनका भी वक्त जाया करते हैं और अपना भी। तो बहुत ज्यादा बोलना ये अच्छी बात नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो अल्लाह और यौमे कयामत पर ईमान रखता हो, उसको चाहिए कि वो खैर की बात करे वरना खामोश रहे। खैर की बात वो है जो इसमें किसी का फायदा हो, किस जिसमें कोई खैर हो, कोई भलाई की बात हो, कोई आखरत की बात हो, कोई अल्लाह का जिक्र हो, या कोई चलो दुनियावी कोई फायदे की बात हो, तो फिर तो इंसान करे। बस यूं ही बोलते चले जाना, उसके ऊपर कोई बात लगा दी, उसके ऊपर कोई बात लगा दी, ये दुरुस्त नहीं है। तो जब आप खैर की बातें बोलेंगे या कम बोलेंगे तो आप देखेंगे कि उससे भी दिल नरम होता है, दिल की सख्ती जरूर दूर होती है। जरूरत की बात करना सीख जाएं अगर हम। इसी तरह एक और चीज जो दिलों को बहुत सख्त करती है वो है लोगों में बहुत ज्यादा वक्त गुजारना और अल्लाह ताला के साथ तन्हाई में कम वक्त गुजारना। नहीं बस हर वक्त ये मूड है, कोई पार्टी होती रहे, कोई किटी पार्टी हो रही है वहां पे जाना है, कहीं लंच है, कहीं शादी है, कहीं शादियों के भी फंक्शन आजकल इतने लंबे लंबे हो गए कि महीनों महीनों फंक्शन ही खत्म नहीं होते। तो हर वक्त एक इस मूड में रहना कि पार्टी टाइम चलता रहे, यहाँ लोगों में बैठ गए, वहां से उठे, वहां बैठ गए, वहां से उठे, वहां, ये दुरुस्त नहीं है। अल्लाह ताला के साथ तन्हाई में वक्त गुजारेंगे तो दिल नरम होगा। इसी वजह से इतकाफ करने का कहा जाता है, और इतकाफ एक सुन्नत भी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10 दिन का इतकाफ करते थे आखिरी अशरे का। तो इतकाफ जो कर सकता है वो इतकाफ करे, ताकि तन्हाई में भी कुछ दिन दिन और रात अल्लाह ताला के साथ गुजरे। और इतकाफ का मतलब ये नहीं कि उसके बाद भी फोन पास रख लें और टेक्सटिंग करते रहें, तो क्या फायदा फिर? अगर आपने लोगों से ही राबते में रहना है, या जो साथ इतकाफ में बैठे हुए हैं उन लोगों को डिस्टर्ब करते रहना है और उनके साथ गपशप करते रहना है, और यहाँ पे एक मूड बना लिया पार्टी का कि चलो अब मस्जिद में पार्टी शुरू हो जाए, तो उसका क्या फायदा? वो तो इतकाफ नहीं है। इतकाफ तो है ये कि अल्लाह के साथ लौ लगाई जाए। तो जहाँ बहुत ज्यादा शौक हो जाता है ना मिलने जुलने का, सोशलाइजिंग का, इधर भी दोस्त हैं उधर भी दोस्त हैं, इधर फन, रातों तक लोगों के साथ बैठे में गपशप हो रही है, फिर लेट नाइट्स होते हैं, फिर फजर रह जाती है, तहज्जुद रह जाती है, ये भी दिल को सख्त कर देता है। तो थोड़ी सोशलाइजिंग कम करें। जरूरी नहीं इंसान हर वक्त हल्ले गुल्ले और पार्टी मूड में रहे। अल्लाह ताला के साथ वक्त गुजारने को तभी मिलेगा ना जब लोगों से थोड़ी किनारा कशी करेंगे। लोगों से किनारा कशी होती ही नहीं, हर वक्त लोगों के गिर्द होते हैं, और बल्कि इसको नापसंद कर देंगे, मैं अकेली हूं अब फलां मेरे पास आ जाओ, या मैं कहीं चली जाऊं, मेरा तो अकेले दिल ही नहीं लगता। दिल क्यों नहीं लगता? इसलिए कि अल्लाह के साथ दिल लगा ही नहीं हुआ, अल्लाह ताला की याद में दिल लगता ही नहीं, लोगों में लगता है बस, शोरों गुल में लगता है। तो हमारे असलाफ को देखें, वो तन्हाइयां कितनी पसंद करते थे, क्योंकि वो तन्हाइयों में अल्लाह से लौ लगाते थे। इसी तरह जो हराम माल खाना है ना, वो भी एक सबब बन जाता है इंसान के दिल की सख्ती का, इससे भी दिल में सख्ती आ जाती, तो हराम रोजी को छोड़ दें। अब और ये तो कुछ परहेज थे, अब क्या है इलाज? सबसे पहली बात ये, अल्लाह के जिक्र की कसरत करें। शुरू में मुश्किल लगेगा, इसलिए कि दिल सख्त है, शुरू में थकेंगे, लेकिन करते जाएं दिल नरम हो जाएगा। मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से शिकायत की थी कि मेरा गुस्सा बहुत आता है तबीयत के अंदर, तो अल्लाह ताला ने फरमाया जब गुस्सा आए तो तुम बहुत ज्यादा जिक्र में मशगूल हो जाया करो, तो मेरा जिक्र करोगे गुस्सा चला जाएगा। तो वाकई आप आउजु बिल्ला पढ़ें तो गुस्सा भी चला जाता है, तो ये जिक्रुल्लाह की बरकत है, इससे दिल भी नरम हो जाएगा, शैतान का गलबा भी नहीं होगा, शैतान उस दिल से भाग जाता है जहां पे अल्लाह का जिक्र होता है। दूसरी चीज, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इलाज की बताई है वो यतीम की किफालत, यतीम के सर पे हाथ रखना। एक आदमी आया था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और उसने सवाल किया था कि मेरा दिल सख्त हो गया है और मेरे मामलात सख्त हैं, तो मैं क्या करूं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम यतीम के सर पे हाथ रखो, यानी उसकी खैरख्वाही करो, उसकी निगहदाश्त करो, उसकी ज़रूरियात को पूरा करो, उसकी सरपरस्ती करो। तो किसी यतीम से मिलें, उसके साथ बातचीत करें, उसकी ज़रूरियात को पूछें, उसके साथ बैठें, उसके सर पे हाथ रखें, आपका दिल नरम होगा। इसी तरह एक और इलाज जो इसमें है वो ये है, इस्तिग़फ़ार बहुत करें, बहुत करें, अकेले बैठ के भी रोएं। इंसान अपने गुनाहों को जब सोचता है ना तो रोना आता है, ना आए रोना तो कोई बात नहीं, रबी दिल सख्त है नहीं आ रहा रोना, कोई बात नहीं, रोने जैसी सूरत ही बना ले, और दिल नहीं भी लग रहा तब भी बैठें और अल्लाह ताला से बातचीत करें, अपने गुनाहों का सोचें और जुबान से भी इस्तेगफार करते रहें, जो मसनून दुआएं वो भी आप मांगें, लेकिन साथ साथ अपनी जुबान में भी अल्लाह ताला के सामने शर्मिंदगी का इजहार करें, अपनी जुबान में भी अल्लाह ताला के सामने अपने दिल का हाल रखें, ये जरूरी है। फिर एक और चीज जो हम कर सकते हैं चौथी, वो ये है, नवाफिल की कसरत कीजिए, नफल ज्यादा पढ़ें। और अकेले में पढ़ने की कोशिश करें, किसी के सामने ना पढ़ें, क्योंकि जब सामने पढ़ते हैं तो इंसान को ये होता है कि फलां मुझे देख रहा है, या देखो उसको भी, वो भी सोचेगा कि मैं कितने नफल पढ़ती हूँ। नहीं, अकेले में पढ़ें। एक और चीज़ ये कि कुराने करीम का तर्जुमा सीखें, समझें, इसकी कोई क्लासेस ज्वाइन कर लें, कोई कोर्स ज्वाइन कर लें। उससे आपको देखेंगे कि बहुत फायदा मिलेगा। क्लासेस ज्वाइन करने से ये एक फायदा होता है कि इंसान खुद को बांध लेता है। वैसे तो आप कहीं सुन भी सकते हैं, यूट्यूब पे आप कुछ लगा के सुन सकते हैं, कुछ कोई लेक्चर सुन सकते हैं, लेकिन जिस वक्त आप कहीं अपने आप को बांध लेते हैं तो उससे फायदा ये होता है कि इंसान को फिर रेगुलर होना पड़ता है, वरना तो आज सुना कल भूल गए, कल किसी और चीज में मसरूफ हो गए। तो कुरान करीम को सीखने समझने से दिल नरम होता है, क्योंकि कुरान में खुद आया कि कुरान शिफा है। कुरान में गौर व फिक्र करेंगे ना तो दिल की सख्ती दूर होगी। कुरान की कोई आयत दिल को लगेगी, और जब दिल को लगे ठहर जाए वहां पे, दुआएं मांगे। और जो कहीं सीख नहीं सकते जाके, तो वो ऑनलाइन कोर्स ले लें। ऑनलाइन कोर्सेस भी कितने आसान हो गए, सबके पास मोबाइल फोन्स हैं, उन पर सारी दुनिया की अगर बातें होती हैं तो उनके ऊपर कुरान भी सीखा जा सकता है। तो कुरान करीम को सीखने के लिए इरादा कर लें, और हमारे इदारे से तो फ्री क्लासेस दी जाती हैं कुरान करीम की तफसीर की, तर्जुमे की। और मसरूफियात जिनकी हैं, या जॉब्स हैं, या और काम हैं, उनके लिए भी हमारे पास ऐसे कोर्सेज हैं कि आपको बिल्कुल पता भी नहीं चलेगा कि आप क्लास ले रहे हैं, या कोई आपकी रूटीन में कोई मुश्किल आई है, बल्कि आसानी के साथ आप कुरान करीम को सीख जाएंगे। इससे आप देखेंगे, जब आप कुरान सीखेंगे, तफसीर इसकी सुनेंगे, आप देखेंगे आपके दिल पे कितना असर होने लगता है। ये दिलों को मोम कर देने वाली चीज है कुरान। इसी तरह सीरत का मुतालिया करें, जैसे रहीकुल मख्तूम है किताब, तजल्लियात नबूवत किताब है। तो ये किताबें हैं, ऑथेंटिक किताबें, इनको पढ़ें, सीरत की किताबें। कोई सीरत का कोर्स ले लीजिए, हमारे पास भी सीरत के कोर्स होते हैं, आप वो ज्वाइन कर लीजिए। और कोई मुश्किल भी नहीं है, ना आपको कोई फीस देनी है, ना तो कोई और किसी किस्म की और कोई मसला है। तो इसमें कोई क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं, कोई आपको टेस्टिंग नहीं हो रही कि आप इसके काबिल हैं या नहीं, बल्कि कोई भी ज्वाइन कर सकता है। आप देखेंगे कि आपके सामने जब सहाबा की ज़िंदगी आएंगी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी आएगी, तो खुद ब खुद आखरत आपको याद आएगी, और ये सोच भी आएगी कि वो कैसे लोग थे जो अपनी आखरत की इतनी फिक्र करते थे, तो मुझे भी फिक्र करनी चाहिए। तो ये चंद एक इलाज है। अब इनके जरिए आप अपने दिल की सख्ती को दूर कर सकते हैं। आज की जो दुआ है वो भी ऐसी दुआ है कि जिसमें हम यही मांगेंगे कि ऐ अल्लाह हमारे ईमानों की तजदीद कर दे हमारे दिलों में। अल्लाहुम्मा जद्दिद, अल्लाहुम्मा जद्दिदिल ईमान फी कुलूबिना। ऐ अल्लाह हमारे दिलों में ईमान की तजदीद कर दे, इसको रिफ्रेश कर दे हमारे ईमान को, तो ताकि हमारा जो ईमान मुरझाया हुआ है वो दोबारा वापस जिंदा हो जाए। आज का जो जिक्र है बहुत ही प्यारा जिक्र है, और बहुत ही मुख्तसिर जिक्र है, और ये जिक्र है सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही। जो 100 दफ़ा ये जिक्र करता है, अगर समंदर की झाग के बराबर भी गुनाह हो, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो माफ़ हो जाएंगे। और समंदर की झाग से क्या मतलब है, यानी जैसे समंदर की मौजें बार बार आके साहिल से टकराती हैं ना, इसी तरह इंसान के गुनाह भी हैं, बार बार उससे गुनाह हो जाते हैं, और इतने ज्यादा गुनाह हैं जैसे मौजें हैं, एक के बाद एक मौज, एक के बाद एक मौज। आपने देखा है ना, समुद्रों में बार बार मौजें आती हैं, तो इसी तरह इंसान के गुनाह है और गुनाहों का सिलसिला है। तो इतने सारे गुनाह भी अगर हो गए हैं, सारी जिंदगी के भी गुनाह हैं, तो अल्लाह ताला वो भी माफ कर देगा, वो बड़ा रहम करने वाला है। वो तो जमीनों आसमान के खला भी कोई भर दे गुनाहों से, जानते हैं कितना बड़ा खला है जमीन और आसमान के दरमियान, 500 साल की मसाफत है। इतने भी गुनाह कर ले, और इतने गुनाह जाहिर है कोई इंसान नहीं कर सकता, लेकिन कोई इतने भी गुनाह कर दे तो अल्लाह ताला फरमाता है कि बस शिर्क ना किया हो तो अल्लाह ताला माफ फरमा देगा। अगर इंसान अल्लाह से माफी मांगे तो, अगर इंसान माफी ही नहीं मांगता और बेपरवाह रहता है तो अलग बात है, लेकिन अगर वो माफी मांगता है, उसने शिर्क नहीं किया हुआ, तो इतने सारे गुनाह भी अल्लाह ताला माफ कर सकता है, बल्कि सिर्फ माफ नहीं, उन गुनाहों को नेकियों में बदल देगा। कि अल्लाह ताला ने फरमाया ना, इल्ला मन ताबा व आमना व अमिल अमलन सालिहन उलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात व कान अल्लाहु गफूरुर रहीमा। कि अल्लाह ताला के सामने जो तौबा करे, ईमान लेकर आए और साले अमल करे, तो अल्लाह ताला फिर यानी तौबा करके ये नहीं कि बस फिर वापस वही चीजें शुरू कर देनी है, बल्कि अपने अमल की भी इसलाह कर ले, अब दुरुस्त कर ले अपने अमल को, नेकियां करना शुरू कर दे, गुनाहों को छोड़ दे, अल्लाह ताला उसके पिछले गुनाहों को भी नेकियों में बदल देगा। सुभान अल्लाह। तो हम ये कोशिश करें कि हम इन अज़कार की पाबंदी करें और इनको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। अल्लाह ताला हम सब से कबूल फरमाए। सुभानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तग़फिरुका व नतूबु इलैक। सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।